हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि ये दुनिया में दुख और कष्ट के अलावा और कुछ नहीं है, जानते हैं ना अच्छी तरह से। सबको पर्याप्त मात्रा में अनुभव है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि नाना प्रकार के कष्टों से गुजरकर हैरान नहीं हुआ हो और अपने आप से कहा हो कि थक गए, बहुत हो गया, कि क्या है ये संसार। और ऐसे अवस्था में आकर जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। दुख में अलग अलग लोग अलग अलग चीज करते हैं, है ना। कोई शराब पीने जाता है, कोई कविता लिखने बैठता है, कोई आत्महत्या करता है, कोई रोते बैठता है, दूसरों को अपना दुख भरी अपनी दुख भरी कहानी सुनाते रहता है। हम जहां भी जाएंगे लोगों की हमेशा कोई दुख भरी कहानी होती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ आप ज्यादा समय बैठेंगे, कोई न कोई दुख की कहानी उसकी होगी ही होगी। हमारी ये समस्या है, वो समस्या है, ये है संसार का तरीका, क्या करें। भगवान ने सृष्टि की रचना ही ऐसे की है कि हर एक प्राणी को दुख मिलते रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्ति में है वो दुखों का सामना कैसे करता है? केवल शोक नहीं करते बैठता है, हाय 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 क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ, भगवान कहां है, क्यों नहीं मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं भगवान, केवल मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो ये सब सोचने के बजाय हमें ऐसे सोचना चाहिए जैसे कि महान भक्तों ने सोचा था, जैसे कि पांडवों ने, कुंती महारानी ने, प्रहलाद महाराज ने इत्यादि। ऐसे महान महान भक्तों को भगवान ने बहुत सारे कठिन परिस्थितियों में डाला, जिससे कि हम जो कि आने वाले पीढ़ियां हैं जान सके कि भक्त को क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और व्यक्ति को दुख और कष्ट का सामना कैसे करना चाहिए। न केवल हम रोते बैठे, हाय हाय करते बैठे, लेकिन भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि आपने मुझे दिखाया है कि यह संसार का सही रूप क्या है। नहीं तो मिथ्या में स्वप्न अवस्था में होकर मैं तो सोच रहा था कि यह संसार कितना सुखी है, कितना अच्छा स्थान है, यह सब जगह कितने आनंद है, लेकिन आपने मुझे सिखाया है इन अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से कि वास्तव में यहां कोई सुख नहीं है, ये भौतिक जगत का असली रूप मुझे आपने दिखाया है। अब मैं जान गया हूं कि आपके आश्रय के अलावा और कोई स्थान और कोई सहारा नहीं है। और भक्त ये भी सोचता है कि अगर आपकी कृपा न होती तो अब मुझे जो कष्ट आया उससे 100 गुना ज्यादा कष्ट मुझे आना था, लेकिन आप कृपालु हैं इसलिए आपने इस कष्ट को बहुत कम कर दिया है। अगर एक्सीडेंट में, अपघात में हमारे हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, हमें समझ लेना चाहिए एक हाथ टूटकर हम बच गए, नहीं तो सारा शरीर चूर चूर हो जाता तो क्या होता। केवल एक क्षण से भी अंतर ज्यादा होता है शायद हमारा सारा शरीर नष्ट हो जाता, लेकिन बाल बाल बच गए, केवल हाथ टूट गया। हम देखते हैं कि हर रोज हाईवे में, राजमार्ग में इतने सारे गाड़ियां आती हैं जाती हैं, कभी कभी इतने नजदीक से जाती हैं, इतने नजदीक से लगा अरे मरते मरते बच गए, और कभी कभी टक्कर हो भी जाता है। तो हर अवस्था में हमें सोचना चाहिए कि हमें बहुत कुछ ज्यादा मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान की कृपा से बहुत कम मिला हमें। कुंती महारानी और पांडव, इनके क्या परेशानियां हुई उनके बारे में हम तो बचपन से महाभारत में सुनते आए हैं। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए थे, कई महीनों तक अपने प्रिय भक्त पांडवों के साथ रहे थे, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे द्वारका वापस लौट के जाना चाहिए, क्योंकि वहां मेरे यदुवंश के भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे विरह में वो भी बहुत पीड़ित हैं, तो मुझे वापस जाना चाहिए। तो जब वो निकल रहे थे तो सारे हस्तिनापुर के निवासी और राजमहल के जो भी निवासी थे वो भी सब बाहर आए, उनमें से कुंती महारानी भी बाहर आईं, और उन्होंने श्री कृष्ण के चरण कमलों में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण किए। श्रील प्रभुपाद इन प्रार्थनाओं को बहुत पसंद करते थे, भजन के रूप में भी गाया करते थे। और कुंती महारानी हालांकि अशिक्षित थी, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो कोई पाठशाला में विश्वविद्यालय में नहीं गई थी, लेकिन इन प्रार्थनाओं में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तत्वों का उल्लेख किया है। इससे हम समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृति या सभ्यता इतनी महान थी कि स्कूल पाठशाला में न जाकर भी एक स्त्री या एक रानी इतनी शिक्षित सुसंस्कृत ज्ञानी हो सकती थी कि उसको सारे तत्व का ज्ञान था। तो कुंती महारानी ने प्रार्थना की कि आप मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। तो ये जो श्लोक आज हम पढ़ेंगे, ये एक ऐसा श्लोक है जिसमें कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दे रही हैं। क्यों धन्यवाद दे रही हैं, आइए हम देखते हैं। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथे न मुहुर्विपद्गणा। यथा ऋषि के कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण से, हे ऋषिकेश, मतलब ऋषिकों के ईश्वर, इंद्रियों के स्वामी, हे विभो, मतलब हे स्वामी, हे प्रभुओं के प्रभु, आपने आपकी माता देवकी, जिसको कि क्रूर ईर्ष्यालु कंस ने बंद कर दिया था, रुद्ध अतिचिराम बंदी बनाया था बहुत लंबे समय के लिए, उसको विमोचिता आपने मुक्त कर दिया, उसकी पीड़ित अवस्था से उसे राहत दे दी, साथ साथ च सह आत्मजा, मुझे भी मेरे बच्चों के साथ, आत्मजा मतलब मुझसे उत्पन्न हुए, मतलब मेरे बच्चे साथ साथ है कृष्ण, आपने मुझे और मेरे बच्चों को भी नाना प्रकार के कष्टों से बचाया। मुहुर विपद गणात, विपद गणात मतलब एक के बाद एक खतरे आते रहे, लेकिन बार बार आप हमें बचाते रहे, आपने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। अब वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण ने देवकी और वसुदेव को मुक्त तो करा दिया, लेकिन क्या तुरंत मुक्त कराया? कितने साल उनको रहना पड़ा जेल में, कोई बता सकते हैं? कितने बच्चे हुए देवकी और वसुदेव के? तो कम से कम 8 साल तो रहे, 8 साल वहां थे। बीच बीच में एक दो बार कंस ने उनको छोड़ दिया था, वापस जेल में डाल दिया था, लेकिन कंस और लेकिन वसुदेव और देवकी के बारे में हम ये नहीं सुनते हैं कि वो बोलते रहते थे अरे भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे भागवत में पढ़ने में आता है कभी? नहीं, संतुष्ट थे भगवान ने हमें यह स्थिति में डाला है, इसमें भगवान ही हमें बचाएंगे। पूरे 8 साल हुए, इसका मतलब हमें यह सबक सीखना चाहिए कि अगर भगवान इसी क्षण हमें हमारे दुख से राहत दिलाने के लिए नहीं आए हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें त्याग दिया है। अरे क्या है, भगवान है ही नहीं, आए नहीं हमारे पास, 5 मिनट हमको इतना कष्ट हुआ, 1 दिन कष्ट हुआ, 1 साल कष्ट हुआ। देवकी वसुदेव को कितने सालों तक कष्ट हुआ, वो भी जेल के अंदर। कम से कम हमें तो कोई किसी ने जेल में नहीं डाला है, हम तो मुक्त हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो देवकी और वसुदेव को अपनी पीड़ित अवस्था से राहत दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कम से कम 8 साल लिए। और उस दौरान क्या हुआ, उनके कष्ट बढ़ते गए। ऐसा नहीं कि भगवान ने कहा आप केवल इंतजार करो, 8 साल सबर करो, मैं आऊंगा, तब तक आपको कुछ नहीं होगा, ऐसा बोला कृष्ण भगवान ने? नहीं, एक के बाद एक आफतें आती रहीं। एक के बाद एक जब बच्चे पैदा हुए तो कंस ने आकर हर एक को मार दिया, कितने क्रूर तरह से मार दिया, नीचे पत्थर के ऊपर पीट कर मार दिया, इतनी क्रूर तरह से मारा। कितना दुख हुआ होगा देवकी और वसुदेव को। कौन से माता पिता ये अपने आंखों के सामने अपने नवजात शिशु की हत्या इस तरह से देख सकेंगे और ऐसे देखकर भगवान में श्रद्धा और प्रेम रख पाएंगे? इसलिए तो भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आए। अगर देवकी और वसुदेव कोई साधारण लोग होते तो भगवान क्यों उनके पुत्र के रूप में आते? क्योंकि वो इतने विशेष शुद्ध भक्त थे, इसलिए भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की। देवकी और वसुदेव पिछले जन्म में प्रिश्नी और सुतपा नाम के उच्च लोके के निवासी थे वसु, और उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी, कई सालों तक, हजारों हजार देवताओं के सालों तक उन्होंने तपस्या की थी। और जब भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने पूछा कि हमें केवल एक वरदान चाहिए, कि हमें आप जैसा कोई पुत्र चाहिए, आप ही हमारे पुत्र बनकर आइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पुत्र बनकर भगवान आए। उस जन्म में भगवान ने नाम लिया प्रिश्नी गर्भ, क्योंकि उनके माता का नाम था प्रिश्नी। और अगले जन्म में वही प्रिश्नी और सुतपा अदिति और कश्यप के रूप में आई, और उस समय उनके पुत्र का नाम था वामन, वामन देव। और इस बार तीसरे जन्म में स्वयं श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो देवकी और वसुदेव इतने महान भक्त थे कि भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए, फिर भी कितने अत्याचार हुए उनके प्रति। इससे हम समझ सकते हैं कि चाहे कोई भक्त हो या न हो, बड़ा भक्त हो, शुद्ध भक्त हो या न हो, यह संसार बड़ा दुख का जगह है, कष्ट देता रहेगा। और जितनी ज्यादा हमारी प्रगति होगी भक्ति में, उतने ज्यादा कठिनाइयां हमारे जीवन में आती रहेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भक्त सोचे अगर आगे आगे चल के भक्ति में प्रगति करके करते करते कष्ट बढ़ते रहेंगे तो फिर वो यही सही, जहां हम हैं वही सही है, भक्ति नहीं है लेकिन कष्ट भी तो नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भले आगे चल के कष्ट ज्यादा हो लेकिन हमेशा के लिए कष्टों से हमें भगवान मुक्त कर देंगे, क्योंकि ये कष्ट जो है भक्त के लिए शुद्धिकरण के एक निमित्त है। और दुखों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण भक्त के हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर देते हैं, जिससे कि वो जब मृत्यु आ जाती है तो वो सीधे भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं, उनको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जो भक्त घबराएगा, हम प्रगति नहीं करेंगे, आगे बहुत कष्ट आएगा, तो उसको बार बार जन्म जन्मांतर कष्ट भुगतना ही पड़ेगा। जैसे अगर एक विद्यार्थी है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, सोचेगा कि प्रगति करेंगे, चौथी में जाएंगे तो चौथी की परीक्षा आएगी, बाप रे बहुत कठिन है, चौथी की परीक्षा तीसरे से ज्यादा कठिन है, और चौथी से आगे पांचवें जाएंगे, छठे सातवें, हर साल परीक्षा कठिन से कठिन होती जाती है। कठिन मतलब क्या, तीसरे कक्षा का जो विद्यार्थी है उसके दृष्टिकोण से कठिन होते जाता है। लेकिन जब व्यक्ति दसवीं में पहुंचता है तो उसके लिए उतना कठिन नहीं होता जितना कि तीसरे कक्षा के विद्यार्थी के लिए होता है। तो वो विद्यार्थी अगर सोचते रहेगा कि आगे बढ़ के परीक्षा से ऊपर परीक्षा है तो हम तीसरे में ही बैठेंगे, तो नुकसान उसी का होगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई भक्त सोचे, नहीं बाबा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यही सही, नहीं तो कुंती महारिन जैसे हमें भी जंगल भेजेंगे, इधर जाएं क्या होगा, नहीं, यहां भी कष्ट मिलेगा, बारंबार जन्म जन्मांतर कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर इस बार हमने हृदय से भगवान की सेवा की, भक्तों के संग में आकर भक्ति में प्रगति की, तो इस जन्म में सारे हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे और हम भगवान के धाम में लौटकर चले जाएंगे, कभी यहां वापस संसार में लौट के आने की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहां हम देखते हैं कि माता देवकी को हालांकि भगवान ने बचाया, उनके ऊपर कृपा की, लेकिन फिर भी उनके 6 बच्चे की मृत्यु हो गई। उनके 6 बच्चों को बचाने भगवान ने। दूसरी ओर कुंती महारानी अपने खुद की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा, देवकी को आपने बचा दिया वसुदेव के साथ, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के साथ बचाया। जहां तक देवकी की बात कर रही है, वो देवकी के बच्चों की बात नहीं करती है कुंती महारानी। इस श्लोक में केवल देवकी की बात कर रही है, वसुदेव की, लेकिन जब अपने बारे में कह रही है, वो कहती है कि आपने सह आत्मज, मुझे अपने बच्चों के साथ में आपने बचाया। तो किसके ऊपर ज्यादा कृपा की, कुंती महारानी के ऊपर भगवान ने ज्यादा कृपा की? देवकी के बच्चों को नहीं बचाया, लेकिन कुंती महारानी और उनके बच्चों को यानी पांडवों को बचाया, दोनों को बचाया। क्यों, क्या कारण हो सकता है, कोई बता सकते हैं? क्यों? श्रील प्रभुपाद सुंदर तात्पर्य देते हैं। वो कहते हैं, क्योंकि देवकी के पति जीवित थे और कुंती महारानी विधवा थी, उसके सुरक्षा के लिए कोई नहीं था, इसलिए कुंती महारानी ज्यादा निस्सहाय भावना में थी, ज्यादा खतरे में थी, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर ज्यादा कृपा की। इसका मतलब है कि जब हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा कठिनाई आती है, खतरे आते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कृपा मिल सकती है। तो अगली बार जब हमारे जीवन में ज्यादा कष्ट दुख आएगा, और श्रीमान कष्ट और श्रीमती दुख केवल दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं, हमारे प्रवेश करने के लिए आतुर रहते हैं, हम दरवाजा बंद करके उनको दूर रखना चाहते हैं, लेकिन बात सुनते नहीं है, बिन बुलाए अतिथि के समान आते रहते हैं, बिना तिथि देखे हुए, बिना रात दिन देखे हुए आते हैं, वो तो आते रहेंगे और जाने का नाम नहीं लेंगे। तो जब वो आएंगे तो अगली बार हमें क्या सोचना चाहिए, भगवान की कृपा आई, और जितने ज्यादा ये दुख आया, मतलब जितने ज्यादा तंदुरुस्त श्रीमान कष्ट और श्रीमती दुख है, जितने तंदुरुस्त रहेंगे, अर्थात जितनी ज्यादा कष्ट दुख हमारे ऊपर आएगा, हमें समझना चाहिए भगवान की ज्यादा कृपा आ गई है। भक्त की यह दृष्टि रहती है। तो कुंती महारानी निस्सहाय थी, अबला थी, कोई नहीं था उनके साथ, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, तब से भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की। और ऐसा नहीं कि जब बच्चे बड़े हो गए, पांडव जैसे शूर वीर शक्तिशाली पुरुष हो गए, उसके बाद भी कितने कष्ट आए और फिर भी भगवान उनको बचाते रहे। ये जगत में भीमसेन जैसा कोई शक्तिशाली हो सकता है? इस जगत में अर्जुन जितना वीर और तेजस्वी योद्धा कोई हो सकता है? इस जगत में युधिष्ठिर जैसा धर्मपरायण कोई व्यक्ति रह सकता है? लेकिन इतना सब होते हुए भी उनको इतने कष्टों का सामना करना पड़ा। इसका मतलब है कि हम जो भी हों ये जगत में, कितने भी बड़े हों, कितने भी बुद्धिमान हो, जो भी हमारा पद हो संसार में, ऐसी कोई शक्ति हमेशा हमारे पास आएगी, हमें कष्ट देगी जो कि हमसे श्रेष्ठ है। जितना भी अमीर आदमी हो उससे ज्यादा कोई अमीर आदमी रहेगा, आज नहीं तो कल। जितना भी ज्यादा शक्तिशाली आदमी है उससे भी एक कोई ना कोई शक्तिशाली आदमी रहेगा। जितना भी सुंदर आदमी है उससे ज्यादा कोई सुंदर एक तो आदमी कोई रहेगा। इस तरह से हर अवस्था में व्यक्ति चिंतित रहता, असंतुष्ट रहता है, हर क्षण खतरे का समय है। तो जब अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव जैसे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो हमारे साथ तो बीतेगा ही। तो भावना हमारी कुंती महारानी की तरह होनी चाहिए। कुंती महारानी आगे भगवान श्री कृष्ण से वर्णन करने लगे कि कौन से कष्ट आए थे उनके जीवन में और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाया था। भक्तों के अनुभव के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले कुंती महारानी अगले श्लोक में बताती हैं, विषान विष, दुर्योधन ने भीमसेन को विष पिलाया था। आपको तो मालूम है कि बचपन से ही जब पांडव हस्तिनापुर में आए थे तो वो लोकप्रिय बन गए। इसके पहले दुर्योधन सबके आंखों के केंद्र बिंदु थे, क्योंकि वो तो राजकुमार थे। सभी लोग आशा करते थे कि आगे चल के दुर्योधन विश्व सम्राट होगा, लाड़ प्यार उसी को मिलता था, सम्मान उसी को मिलता था। उधर पांडव कहां जंगल में थे, पांडु, माद्री और कुंती महारानी के साथ वहां थे। लेकिन जब पांडु की मृत्यु हो गई तो फिर माद्री ने सती कर ली और कुंती महारानी केवल अपने बच्चों के साथ में रह गई। और उस समय उनके संग जो ऋषि मुनि थे उन्होंने जाकर खबर दे दी हस्तिनापुर में, और कुंती महारानी और पांच बालकों को वो हस्तिनापुर वापस ले आए और भीष्म देव और धृतराष्ट्र के संरक्षण में उनको रख दिया। और जब पांडवों को लोगों ने देखा उनका मन आकर्षित हो गया, क्योंकि पांडवों के व्यवहार में, इनके रहन सहन में, बोलने में इतना मिठास था, इतनी मर्यादा थी। और दुर्योधन आदि इनके व्यवहार में क्या था, केवल घमंड, कटु वचन। तो जब लोगों ने पांडवों को देखा तुरंत पांडवों के प्रति उनका हृदय चला गया और ये देखकर दुर्योधन को बड़ा ईर्ष्या होने लगा। दुर्योधन ने सोचा कि अभी हमारा जो विशेष स्थान है ये राज्य में ये नहीं रहा, पांडवों ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। और जब ये छोटे लड़के राजकुमार सारे 100 कौरव और 5 पांडव जब मिलजुल के खेलते तो सबसे ज्यादा बलवान भीमसेन हुआ करते थे। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं कभी कभी कुश्ती करते हैं, तो भीमसेन जब कुश्ती करते थे तो एक साथ में 100 कौरवों के साथ युद्ध करते थे, मतलब कुश्ती करते थे, उठा उठा के उनको फेंक देते थे और नदी में फेंक देते थे दूर। और कभी कभी उनका मजाक उड़ाते थे, उनको छेड़ते थे, और छेड़ने के बाद जब वो गुस्से हो जाते थे तो उनके गुस्से को देखकर भीमसेन हंसने लग जाते थे और कौरव और भी गुस्सा हो जाते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इस तरह से हर क्षेत्र में, चाहे वो द्रोणाचार्य के संरक्षण में जब वो लोग सीख रहे थे धनुर्विद्या, या वो और कुछ कार्य कर रहे होते, हर क्षेत्र में पांडव श्रेष्ठ थे। तो ये देखकर दुर्योधन के हृदय में जो ईर्ष्या की अग्नि है वो ज्यादा से ज्यादा प्रज्वलित रूप में जलने लगी, असहनीय हो गया दुर्योधन के लिए। और भीमसेन को बड़ा मजा आता था, खास करके दुर्योधन का अपमान करने के लिए। अपमान मतलब मजाक में। भीमसेन का हृदय शुद्ध था, उसके हृदय में कोई कपट की भावना नहीं थी, लेकिन जानबूझकर एक युव अवस्था के जोश में आकर वो इस तरह से अपने भाइयों को, कौरवों को इधर उधर फेंक डालते थे, हरा देते थे। तो दुर्योधन ने सोचा कि अब बहुत हो गया, अब कुछ तो करना चाहिए। तो शकुनी के पास गए। शकुनी को पहले ही भीष्म देव के ऊपर गुस्सा था, क्योंकि शकुनी की इच्छा थी कि उसकी बहन जो है गांधारी, उसका विवाह पांडु से होना चाहिए। लेकिन भीष्म देव ने क्या किया, अंधे राजा धृतराष्ट्र से करा दिया। तो तब से शकुनी को गुस्सा था भीष्म देव के ऊपर। और भीष्म देव पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, शकुनी को यह मालूम था। तो अगर दुर्योधन कुछ पांडवों के प्रति करेगा तो भीष्म देव को बहुत दुख होगा, ये शकुनी को मालूम था। इसलिए शकुनी ने दुर्योधन को प्रोत्साहन दिया, उकसाया, ठीक है तुम भीम के साथ कुछ करना चाहते हो, चलो चलो ऐसा करो। बड़ा बुद्धिमान था शकुनी, दुष्ट बुद्धि, और उसने अच्छी योजना दे दी दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने जाके अपने छोटे भाई दुशासन से कहा कि देखो ये भीमसेन और पांडव तो हमारे नाक में दम बन गए हैं, इनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो चलो मेरे मन में एक योजना है, मैं भीमसेन और पांडवों को बहुत बड़ा दावत खिलाऊंगा, और दावत में मैं विष मिला दूंगा, जहर। तो ऐसी योजना बनाकर एक दिन दुर्योधन, अन्य कौरव और पांडव नदी के तट पर गए। काफी खेला उन्होंने इधर उधर, और हर बार की तरह भीमसेन ने पकड़ पकड़ के हर कौरव को नदी में फेंक दिया। और उसके बाद में शानदार दावत रखा गया सामने, जैसे कि राजकुमारों के लिए योग्य है। नाना प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन, और अपने निजी हाथों से दुर्योधन ने छुप छुप के विष डाल दिया भीमसेन के भोजन में। और भीमसेन को तो कुछ पता नहीं चला, भीमसेन ने भोजन आके देखा सब कुछ भूल गए, और खाते रहे खाते रहे खाते रहे। और खाने के बाद खेल क्रीड़ा चालू थी, शाम तक खेलकूद चलता रहा, मतलब इतने घंटे शाम तक ये विष का असर हुआ ही नहीं भीमसेन के ऊपर। फिर शाम को थोड़ी बहुत थकान होने लगी भीमसेन को, थोड़ी नींद आने लगी। तब तक शाम हो चुका था और सारे पांडव कौरव कह रहे थे चलो अभी वापस जाने का समय आ गया है। तो सब धीरे धीरे वापस राजमहल में चले गए। भीमसेन ने सोचा कि चलो थोड़े थक गए हैं, पता नहीं आज क्यों थोड़ी बहुत थकान आ रही है, इधर नदी के तट पे इस सुहावने बहुत मधुर वातावरण में थोड़ा आराम कर लेते हैं। भीमसेन बेचारे, उनको मालूम नहीं था कि विष का पान किया है उन्होंने और इसकी वजह से उनको नींद आ रही है। तो वहां लेट के सो गए भीमसेन गहरी नींद में। उधर दुर्योधन और दुशासन पीछे से देख रहे थे, हाँ चलो अभी सो गया भीम। तो बड़े मजबूत रस्सी उन्होंने लाए और भीमसेन को बांध दिया अच्छी तरह से, सारा शरीर बांध दिया, हाथ पैर शरीर सब कुछ, और उनको नदी में ढकल दिया, गंगा नदी जो कि हस्तिनापुर के पास से गुजरती थी। तो जब भीमसेन पानी में गिर गए, वजन इतना भारी, तो सीधे पानी में नीचे गए। और गंगा के पानी में चलते 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 वो उस आकाश पथ में चल गए अचानक, जो कि नीचे लोक नाग लोक में जाती है। अब देखिए ये ब्रह्मांड में जो हमारे इन इंद्रियों से, स्थूल इंद्रियों से, आंखों से इत्यादि दिखाई पड़ता है वो संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं है। ऐसे कई लोक हैं, ऐसे कई पथ हैं जो कि बहुत सूक्ष्म हैं, भले वो भौतिक हैं लेकिन बहुत सूक्ष्म, इन आंखों से भी हम नहीं देख सकते उनको। जैसे कि बताया जाता है कि गंगा ये तीनों लोकों में बहती है। स्वर्ग लोक में गंगा जी को मंदाकिनी कहते हैं, पृथ्वी लोक पर गंगा, और पाताल में भोगवती है, वही गंगा जो कि वामन देव के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए तीनों लोकों में से बहते हुए नीचे गई है, तीनों लोकों को पावन करते हुए। तो हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऊपर के लोकों से जब गंगा जी यहां पृथ्वी लोक पर आए, तो वो कहानी आप सब जानते हैं, शिव जी के जटाओं में आ गई, शिव जी ने गंगा जी को धारण किया जटाओं में, इसलिए उनका नाम है गंगाधर, और फिर यहां बहने लगी। तो हम तो देखते नहीं है कि पानी गंगा जी आ रहे आसमान से, कुछ हमें पता नहीं चलता। हमें तो बताया जाता है कि गोमुख से गंगा जी उत्पन्न होती है, तो स्वर्गलोक की गंगा कहां से आती है? आकाश पथ से आती है। यह सूक्ष्म पथ है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे यहां से अगर हमें स्वर्गलोक जाना है तो हम, जैसे कि प्रभुपाद जी बताया करते थे, हम कोई रॉकेट या हवाई जहाज लेकर नहीं जा सकते, सूक्ष्म पथ से ही जाना होगा हमें। पुण्य का अर्जन जब हम करेंगे, उस पुण्य के बल पर हमें अगला जन्म मिलेगा और हमारी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ वहां चली जाएगी, आकाश पथ से, सूक्ष्म पथ से, जिसको कि हम इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस सूक्ष्म पथ से गंगा जी नीचे आती आती यहां पृथ्वी लोक पर आती है, और उसी तरह से सूक्ष्म पथ से नीचे नाग लोक से होते होते पाताल लोक तक पहुंच जाती है। और ऐसे बताया जाता है कि कई ऐसे योगी वगैरह होते हैं या ऋषि मुनि, ऊपर के लोक से जब यहां आना चाहते हैं तो गंगा जी के माध्यम से आते हैं, यहां पर एक क्षण में आ जाते हैं, स्वर्गलोक में गंगा जी में डुबकी मारते हैं, बस यहां ऊपर आते हैं। प्रभुपाद बताया करते थे कि उनके पिताजी एक ऐसे साधु को जानते थे जो हर रोज हरिद्वार में डुबकी लगाते थे और प्रयाग में बाहर आते थे, प्रयाग मतलब अलाहाबाद, वहां त्रिवेणी संगम में स्नान करके फिर से वापस हरिद्वार अपने आश्रम में चले जाते थे, हर रोज अप डाउन, जैसे बेलगाम खानापुर अप डाउन लोग करते हैं या अंबेवाड़ी बेलगाम लोग आते जाते हैं, वैसे रोज इनका कार्यक्रम रहता था। तो इस तरह से गंगा जी में भी एक सूक्ष्म पथ है। तो दैव से भीमसेन उस सूक्ष्म पथ में आ गए और अचानक नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में जब पहुंचे तो वहां जो नाग थे आश्चर्यचकित हो गए, अरे अचानक ये कौन आ गया हमारे बीच, कहां से, मनुष्य है, मनुष्य लोक से आ गया पृथ्वी लोक से। तो तुरंत जब उन्होंने देखा कि इतना हृष्ट पुष्ट व्यक्ति आया, उन नागों ने डस दिया भीमसेन को। लेकिन यह भी भगवान की योजना थी, क्योंकि नागों के डसने से जो विष का प्रभाव था वो नष्ट हो गया, तो ये विष और वो विष को मिलकर वो दोनों शून्य हो गए और भीमसेन जागृत हो गए, होश आ गई वापस। होश आने से भीमसेन ने देखा, अरे मैं कहां हूं, ये नाग लोग हूं कर रहे हैं और ये मेरा बंधा हुआ है, ये सब क्या है। तो केवल भीमसेन ने थोड़ा कुछ शक्ति लगाया और रस्सी तोड़ दिए, फिर एक एक नाग को पकड़ पकड़ के उन्होंने पटक दिया जमीन पे, सबको मार दिया, थोड़े लोगों को कुचला दिया नीचे, और बाकी जो नाग थे डर के मारे भाग गए नाग लोक के राजा वसुकी के पास, त्राही त्राही मचाओ, ये मनुष्य लोक से कहां कोई व्यक्ति आ गए, पता नहीं क्या है। तो वसुकी ने एक मनुष्य शरीर धारण किया और उनके जो साथी थे जिनका नाम था अर्क, उनको साथ में लेकर आए कि देखते हैं कौन ये मनुष्य है जितना उत्पात कर रहा है यहां पर, आया कैसे यहां। तो जब वहां पर पहुंचे तो अर्क ने तुरंत उनको पहचान दिया और कहने लगे कि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे वंशज हैं, क्योंकि अर्क जो है वो कुंती महारानी के पूर्वज थे और कई सालों तक, कई साल पहले वो मनुष्य समाज में रहे थे, इसलिए भीमसेन को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने जाकर भीमसेन को आलिंगन किया और वसुकी से कहा कि ये कुंती पुत्र भीमसेन है, इसका अच्छी तरह से हमें स्वागत करना चाहिए। तो वसुकी ने कहा कि कैसे स्वागत करें, क्या दें। तो अर्क ने कहा कि नागलोक का जो रस है अमृत, वो देना चाहिए भीमसेन को, जिससे कि वो इतना तंदुरुस्त हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, 10,000 हाथियों की शक्ति उसमें आ जाएगी। पहले ही भीमसेन इतने मजबूत, उसके बाद ये अमृत का पान जब किया तो 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। तो उनके सामने ये आठ बड़े बड़े ये अमृत के, नागलोक के अमृत के घड़े रख दिए, और नागलोक के निवासी जब भी इसका पान करते हैं तो उनको धीरे धीरे लेना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन भीमसेन ने क्या किया, हर एक मटका एक साथ एक क्षण में पी लिया, दूसरा मटका लिया उसको एक क्षण में पी लिया। सारे नागलोक के निवासी देख के हैरान हो गए कि है ऐसा व्यक्ति ये नागलोक का अमृत का पान कर रहा है। और फिर इसको पचाने के लिए फिर भीमसेन थोड़ी निद्रा आई, वो सो गए, आठ दिन सो गए, और आठ दिन में ये रस शरीर के अंदर चलता रहा, पचन होकर सारे शरीर ने इसको स्वीकार किया और सारी शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त और तगड़ा हो गया, 10,000 हाथियों की शक्ति आ गई। और जब फिर से वो जाग गए तो वसुकी ने उनको सुंदर मखमली वगैरह कपड़े, सफेद कपड़े दिए और उनको खुद गंगा जी तक पहुंचा दिया, जहां की दुर्योधन ने उनको अंदर ढकल दिया था। और गंगा जी के बाहर आकर भीमसेन दौड़ते दौड़ते वापस गए अपने महल में। उधर कुंती महारानी, पांडव बड़े चिंतित थे, आठ दिन बीत गए, कहां है भीमसेन, कहां गया, सबको पूछा उन्होंने, किसी को पता नहीं। दुर्योधन ने कहा, नकल की नाटक किया, अरे नहीं आए भीम, कहां गया। लेकिन अंदर ही अंदर से दुर्योधन बड़ा खुश था, मुझे मालूम है कहां है, अच्छी जगह गया है वो, दुर्योधन अंदर से ऐसे सोच रहा था, बाहर से शोक व्यक्त कर रहा था, अरे कहां गया भीम, क्या हो गया। जब कुंती महारानी ने विदुर से पूछा कि पता नहीं क्या हुआ है, भीमसेन को इतने दिन नहीं आया, तो वो आशा करती थी कि विदुर कुछ सांत्वना देंगे, कुछ मार्ग निकालेंगे, और विदुर ने उनको निराश नहीं किया। विदुर ने कहा, आप बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आपके पांचों पांडवों को वरदान मिला है कि वो लंबी आयु जिएंगे, भीमसेन की मृत्यु का समय नहीं आया, वो शीघ्र ही लौटकर आएगा। और नौवे दिन आए भीमसेन 10,000 हाथियों के शक्ति युक्त से युक्त, और उस समय उन्होंने सारी कथा बता दी। वसुकी को पता चल गया था अपनी योग शक्ति से कि हुआ क्या था, और उन्होंने भीमसेन को बता दिया, और भीमसेन ने आके सारे पांडवों को, अपनी माता कुंती को ये सब बता दिया कि क्या हुआ था, कैसे दुर्योधन ने बांधा था, विष पिलाया था। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को हृदय में बहुत धक्का पड़ गया। उनको मालूम था कि दुर्योधन पांडवों से बहुत ईर्ष्या करता है, लेकिन इस हद तक दुर्योधन जाएगा ये कभी भी पांडवों ने सोचा नहीं था। तो दुर्योधन के इस कार्य के बारे में चर्चा करते रहे पांडव, और फिर युधिष्ठिर महाराज ने अपना मत दिया कि अगर हम इस बात को सबको बताएंगे तो पांडव और कौरवों के बीच में जो दुश्मनी है वो खुल जाएगी, खुली दुश्मनी हो जाएगी, और ये हमारे सारे राज्य के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए अच्छा है कि हम इस बारे में चुप रहे, किसी से बात नहीं करें इसके बारे में। अगर हमने ज्यादा बोल दिया तो शायद दुर्योधन इतना क्रोधित हो जाएगा, उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ जाएगी कि निश्चित ही न कोई ऐसे षड्यंत्र अवश्य करेगा हम सबको मारने के लिए। और धृतराष्ट्र राजा है, वो तो उनका पक्ष करेंगे लेंगे, भीष्मदेव हालांकि हमें प्रेम करते हैं लेकिन वो उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, कोई हमें बचा नहीं पाएगा, इसलिए सारे पांडव चुप रह गए। कुंती महारानी ने समझ लिया कि केवल भगवान ने ही मेरे लड़के को बचाया हुआ है। तो जब श्री कृष्ण इस समय हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जा रहे थे तो माता कुंती इस घटना को याद कर रही थी, क्योंकि कुंती महारानी ने इस श्लोक में बताया है सह आत्मज कि मेरे बच्चों को भी बचाया आपने, तो अभी वो याद कर रही है कि कैसे भीमसेन को उन्होंने बचाया था। भगवान की कृपा न होती तो भीमसेन नहीं बचते, इतना जबरदस्त विष पिलाया था। जब दुर्योधन ने देखा कि भीमसेन वापस आ गया है, अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, अरे ये क्या हो गया, उल्टा ही हो गया, मरने के बजाय भीमसेन को 10,000 शक्तियों की, हाथियों की शक्ति मिल गई, हमने क्या सोचा और क्या हुआ। लेकिन बाहर से खुशी व्यक्त की दुर्योधन ने, आलिंगन किया, अरे आ जा, हम कितने चिंतित थे, अब कितने खुश हो गए तो वापस आ गए भीमसेन, लेकिन अंदर ही अंदर दांत रगड़ रहे थे। तो ये होते हैं असुरी प्रवृत्ति के लोग, बाहर से अच्छे अच्छे, अंदर से कुछ और। अगले दिन दुर्योधन ने फिर से धातुरा जो विष होता है वो भीमसेन के भोज में फिर से मिलाया था, और ये विष 100 आदमियों को मारने के लिए था। अकेले भीमसेन ने खाया, कुछ भी नहीं हुआ भीमसेन को। भीमसेन ने बड़े आनंद से दुर्योधन का भोग खा लिया और उसको आराम से पचा लिया। इस तरह से बाहर भगवान श्री कृष्ण तो गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सबके उदर में हूं, मैं पचन अग्नि हूं, जठर अग्नि। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति भीमसेन के उदर में इतने प्रज्वलित रूप से वो प्रकट करा रहे थे कि धातुरा को उन्होंने पचन करा दिया। आगे कुंती महारानी प्रार्थना करती, सोच रही हैं कि जब दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि उन्होंने पांडवों को वारणावत में लक्षागृह में भेज दिया और बाद में जला डाला उनको, किस तरह से केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो बच गए। उन्होंने जमीन से एक रास्ता, मार्ग बनाकर वो निकल पड़े और वहां पांच चांडाल उनकी मां आई थी और वो उस आग में जल के राख हो गए, और सबने सोचा कि शायद 5 पांडव और कुंती महारानी की लाश है ये। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कैसे योजना की कि वही 5 लोग और एक स्त्री उनके साथ में आई थी उसी समय, जबकि भीमसेन और अन्य पांडव निकल पड़े थे वहां से। तो यहां भी कुंती महारानी याद कर रही है कि केवल आपकी कृपा से हम बच गए। आगे कुंती महारानी और भी अवस्थाएं याद कर रही हैं कि जब हम वनवास में गए थे उस समय कितने कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ा था, कितने राक्षस सामने आए। जो राक्षस मतलब जो मनुष्यों को खाते हैं, मनुष्य का खून पीते हैं, मनुष्य का मांस खाते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं राक्षस। आजकल भी हमने सुना है कि कई ऐसे जंगलों में, पृथ्वी में ऐसे भी कई लोग हैं, जैसे अफ्रीका में 1-2 देशों में वगैरह, जो आज भी मनुष्य का मांस खाते हैं। तो ये राक्षस वृत्ति है। लेकिन पहले रावण इत्यादि वो तो ऐसे खून पीते थे, तो ऐसे कई राक्षसों का सामना करना पड़ा, लेकिन पांडवों ने उनकी हत्या कर दी। और ऐसी एक राक्षसी थी जिनसे भीमसेन का विवाह भी हो गया, उनका नाम क्या था? हिडिंबा। और उनसे फिर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, और घटोत्कच ने भी बहुत शूर वीरता से युद्ध किया कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और उन्होंने कहा था अपने पिता से कि जब भी आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी केवल मेरे बारे में सोचिए, मुझे बुलाइए, मैं तुरंत आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। और कुरुक्षेत्र में भीमसेन ने उनको याद किया और घटोत्कच वहां आए, लेकिन उनकी भी मृत्यु रणभूमि पर हो गई। तो जंगल में भी इन नाना परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बचाया। आपको अक्षय पात्र की कहानी तो मालूम है, जब कि ईर्ष्यालु दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को भेजा था पांडवों के पास और उनको बताया था कि आप दोपहर के बाद में जाना वहां आपके 10,000 शिष्यों के साथ में, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि द्रौपदी जब एक बार भोजन ग्रहण कर लेती है उसके बाद अक्षय पात्र में कोई भोजन नहीं मिल सकता। पांडवों को पता नहीं चला था कि क्या करें, उन्होंने सुझाव दिया कि आप जाके स्नान करके आइए। तब तक द्रौपदी ने बड़े निस्सहाय ढंग से कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए, कृष्ण ने उस अक्षय पात्र से एक कण को चख लिया और उतने में ही दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों का पेट भर गया और वो सब वहां से निकल पड़े। इस तरह से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर पांडवों को दुर्वासा मुनि के क्रोध से बचा दिया, क्योंकि दुर्वासा मुनि का क्रोध बड़ा प्रसिद्ध है। सभी लोग दुर्वासा मुनि से घबराते थे, इसलिए उनकी अच्छी तरह से सेवा करते थे। कहीं सेवा में कुछ भूल चूक हो गई तुरंत श्राप दे देते थे, जबरदस्त श्राप देते थे, सभी लोग घबराते थे उनसे। लेकिन अगर किसी ने अच्छी सेवा की तो बहुत अच्छे अच्छे वरदान भी दे देते थे। आखिर में वो हैं शिवजी के अंशावतार दुर्वासा मुनि। और फिर कुंती महारानी याद कर रहे थे उस असत सभा की, जबकि द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ और इतने सारे अतिरथी महारथी वहां उपस्थित थे, सब शूरवीर धर्मपरायण राजा जैसे भीम, जैसे कि भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इतने सब थे लोग थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और जब वस्त्र हरण आरंभ हुआ तो केवल श्री कृष्ण ने द्रौपदी का संरक्षण किया, वस्त्र के रूप में उन्होंने अवतार लिया। जब द्रौपदी ने हे गोविंद कह के पुकारा निस्सहाय भावना से, और आगे कुंती महारानी सोचने लगी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी हे कृष्ण आपने मुझे बचाया और हमारे बच्चों को बचाया, वैसे कुरुक्षेत्र की रणभूमि जैसे कि परीक्षित महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवत में, वो एक ऐसे विशाल सागर के समान था, और इस सागर में जो कौरव योद्धा थे जैसे कि भीष्मदेव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण इत्यादि, वो बड़े बड़े तिमिंगल के समान थे। तिमिंगल मतलब जो बहुत बड़े बड़े प्राणी होते हैं जो सागर में रहते हैं, बीच सागर में, इतने बड़े हैं कि इनकी कल्पना हम नहीं कर सकते। और पांडवों के योद्धा जो थे उनके सामने तो छोटे मछली जैसे थे, और ये बड़े तिमिंगल बड़े बड़े मछलियों को भी खा जाते हैं आसानी से, हजारों मछलियों को एक साथ निगल लेते हैं। तो वैसे देखा जाए भौतिक दृष्टि से कौरवों की सेना बड़ी थी, 11 अक्षौहिणी वर्ग थे, पांडवों के केवल 7 थे, और कौरव सेना में ऐसे बड़े बड़े तिमिंगल के समान योद्धा थे, और पांडव सेना में अर्जुन के सिवाय और कोई नहीं था, और अर्जुन भी भीष्मदेव के समान सामने क्या था। लेकिन फिर भी कुंती महारानी कह रही हैं कि आपकी कृपा से ही मेरे लड़कों का विजय हुआ, मेरे लड़के जीत गए और कौरव हार गए। आगे कुंती महारानी कहती हैं कि थोड़े समय पहले भी जब युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने आक्रमण किया, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, और आगे चल के जो आखिरी वंशज थे पांडव वंश के परीक्षित महाराज, उनका संरक्षण भगवान ने किया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उत्तरा देवी के गर्भ में प्रकट हुए और घूमते घूमते उन्होंने उस गर्भ का रक्षण किया। इस तरह से कुंती महारानी सोच रही हैं, बहुत आभार व्यक्त कर रही हैं कि इस घटना में, इस घटना में, इस घटना में कितने बार आपने बार 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 हमें बचाया, हमें भी इसी तरह से आभार व्यक्त करना चाहिए भगवान को, बजाय ये कि हम भूल ढूंढते रहें भगवान ने इस समय हमें क्यों नहीं बचाया, इस समय हमें यह क्यों नहीं दिया। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कितने कृपालु हैं, कितनी बार आपने हमें बचाया, हमारी ये परिस्थिति थी, याद कीजिए आपकी जो कठिन से कठिन परिस्थितियां आई जीवन में और किस तरह से भगवान ने आपका संरक्षण किया उस अवस्था में। और ये आभार की भावना भगवान के सामने अगर हम प्रकट करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। इसलिए आगे कुंती महारानी कहती हैं, विपदः संतुतः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो पुनर्जन्म दर्शनम भवतो व्हाट इज दैट वर्स अपुनर्भव दर्शनम। कुंती महारानी कहती है कि विपदः संतुतः शश्वत, ऐसे जो विपद है बार 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 आते रहने दो, जिससे कि क्या होगा, आपका दर्शन होगा। जब कष्ट हमारे जीवन में आते हैं इसका मतलब है हम आपका दर्शन करते हैं। देखिए कितनी सुंदर भावना है, कष्ट को हमें भगवान समझना चाहिए, भगवान का एक रूप, जैसे कि कुंती महारानी बोल रही है। और जब हम भगवान का दर्शन करते हैं कष्ट के रूप में, अपुनर भव दर्शनम, हम भव दर्शन कभी नहीं करते हैं, पुनर्भव दर्शन। पुनर्भव मतलब बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु लेना। अपुनर्भव मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। तो कुंती महारानी कहती हैं, ऐसे जो समस्याएं हैं, कष्ट हैं, हमारे जीवन में आते रहने दीजिए, आते रहने दीजिए। क्योंकि जब ये आते हैं हमारे जीवन में, इन कष्टों के रूप में हम आपका दर्शन करते हैं, और आपका अगर हमने दर्शन किया तो फिर ये भव सागर से हमारा मुक्त होना निश्चित है। इस तरह से कुंती महारानी की प्रार्थना है। प्रहलाद महाराज के साथ भी ऐसे ही हुआ था, कितने कष्ट हुए, लेकिन आज हम प्रहलाद को इसलिए याद करते हैं कि इतने सारे कष्टों के बीच में रहते हुए भी कभी भी वो भगवान को भूले नहीं, हमेशा वही आभार की भावना, कृतज्ञता की भावना वो बनाए रखे, कभी भगवान को दोषी नहीं ठहराया। उसी तरह से अंबरीश महाराज, जब दुर्वासा मुनि ने उनके ऊपर आक्रमण किया तब भी अंबरीश महाराज ने भगवान में कोई भूल नहीं ढूंढा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो भगवान का स्मरण करते रहे। भक्त हमेशा ये जानता है, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के, कि अगर भगवान श्री कृष्ण किसी को मारना चाहे तो कौन उसको रोक सकता है, कौन बचा सकता है, और अगर भगवान किसी को बचाना चाहते हैं तो कौन उसको मार सकता है। तो अगर वैसे भगवान चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हो, हमारा नुकसान हो, वो तो होना ही है, और अगर भगवान चाहते हैं कि नुकसान न हो तो कोई भी कुछ भी क्यों न करे, कुछ नहीं होगा हमारा। जैसे कि आपने कहावत सुना होगा, अगर भगवान हमको सब कुछ देना चाहते हैं तो हम इन चीजों को स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि हमारे केवल दो हाथ हैं। भगवान देंगे छप्पर फाड़ के तो हम स्वीकार करने के लिए पात्र नहीं है, और जब भगवान छीनना चाहेंगे तो हम हमारे वस्तुओं का संरक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस संरक्षण के लिए भी हमारे दो ही हाथ हैं। तो भगवान ले जाना चाहेंगे, आसानी से सब कुछ ले जा सकेंगे, इसलिए हर परिस्थिति में हमें भगवान का हाथ देखना चाहिए, छुपा हुआ हाथ। ये है भक्त की भावना। भक्त कभी भी अपने नसीब को कोसता नहीं है, कभी भी दूसरे व्यक्तियों को दोषी नहीं ठहराता है, और कभी भी भगवान के बारे में बुरा नहीं सोचता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुंती महारानी की तरह प्रार्थना करता है कि आने दीजिए ऐसे बार बार कष्ट, ताकि हम आपका स्मरण करते रहें। अगर कष्ट जीवन में नहीं आएंगे तो शायद हम आपको भूल सकते हैं, तो ये कष्ट भी आपकी कृपा है। तो ऐसे महान भक्तों के जीवन से, इनकी प्रार्थनाओं से हम ये सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में जब दुख आएंगे तो हमारी भावना, हमारा बर्ताव, हमारे वचन कैसे होने चाहिए। तो कुंती महारानी इसी तरह से भगवान को धन्यवाद दे रही हैं कि आपकी वजह से ही हमारा जीवन इस तरह से बच गया है, बार बार आप ही हमारे एकमात्र आश्रय हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करते हैं तो हमें भी ऐसी ही भावना रखनी चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हमें सदा आपकी सेवा में आप लगाइए, आपके चरण कमलों में हमेशा आप रखिए, हमें कभी भी माया के चंगुल में फंसने मत दीजिए, आपसे विमुख कभी भी होने मत दीजिए। इस भावना से हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो किसी के कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी है? इत्यादि। कुंती महारानी तो बड़े ऊंचे भक्त हैं, इसलिए उनकी भावना इस तरह से हो सकती है, और वो समझ सकते हैं कि ये भगवान की कृपा है, लेकिन हम तो सब साधारण लोग हैं, हमारे जीवन में हम ऐसे मन की शांति कैसे बनाए रख सकते हैं, यही प्रश्न है ना। इसलिए तो कहा जाता है कि महाजनों ये न गतः सपन्था, कि हमें भगवान के भक्तों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर कष्ट भगवान का रूप है, बस ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। भले ही स्वीकार करने में हमें कष्ट हो, कठिनाई हो, लेकिन अगर हम श्रद्धा पूर्वक इस भावना को बनाए रखते हैं तो भगवान की कृपा हमें मिलेगी। और अगर हम कुंती महारानी जैसे ऊंचे भक्त नहीं हैं तो बनने का प्रयास कर सकते हैं, और यही तरीका है बनने का, उनके पद चिन्हों में चलना, अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके। जब अगली बार कष्ट आएगा, हम उस कष्ट का रूप क्या देखते हैं? जिस व्यक्ति ने हमें कष्ट दिया उसका रूप हमें मन हमारे आंखों के सामने आता है, या भगवान कृष्ण का? तो हमें समझना चाहिए, अगली बार जब जीवन में कष्ट आएगा उस व्यक्ति का मुंह नहीं देखना है, हमें मन में कृष्ण को देखना है। बांसुरी बजाते हुए हमारे जीवन में वो कृपा दे रहे हैं। ये अनुशीलना, प्रैक्टिस की बात है। ऐसे प्रैक्टिस करते रहे तो वो भी भावना सही हो जाएगी, कुंती महारानी जैसे हम आगे प्रगति कर पाएंगे। ठीक है, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को युद्ध का स्थान क्यों चुना? धर्मम आचरेत, बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र बहुत पावन भूमि है, यहां धर्म का आचरण किया जाता है। अनादि काल से बहुत पवित्र स्थान माना गया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चय किम अकुर्वत संजय। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो कुरुक्षेत्र ये धर्म का क्षेत्र है। प्रभुपाद जी उसी श्लोक में सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि कुरुक्षेत्र एक ऐसी खेती है जिसमें चावल के बीज बोए हुए थे। अब आप में से जो किसानी का खेती का काम करते हैं, आप जानते हैं कि जब कोई फसल उगता है उसके साथ साथ ऐसे भी कई चीजें, लताएं उपलताएं आती हैं जो हानिकारक होती हैं, उनको उखाड़ना पड़ता है। तो ये कुरुक्षेत्र का ऋण भूमि जो है, ये ऐसे खेती के समान है जहां चावल का फसल उग रहा है, और अच्छे से खेती में चावल अच्छे उगेंगे। उसी तरह से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जैसे धर्मपरायण युधिष्ठिर महाराज और उनके साथी, उनका यश, उनकी शक्ति, उनका विजय निश्चित है। लेकिन दुर्योधन और उनके असुरी प्रवृत्ति के साथी जो हैं, उनका हार निश्चित है, क्योंकि वो उन उपशाखाओं की तरह है जिनको उखाड़ना चाहिए। और वहां खेती करने वाला किसान कौन है? श्री कृष्ण। तो इसलिए श्री कृष्ण जानते थे कि ऐसे खेती में हम जाएंगे, ऐसे जगह जाएंगे जहां पांडवों की शक्ति बढ़ जाएगी, कौरवों की शक्ति कम हो जाएगी। इसलिए धृतराष्ट्र चिंतित थे कि ये लोग कुरुक्षेत्र में गए हैं युद्ध करने के लिए, तो ऐसे धर्म क्षेत्र में जाने से धर्मपरायण लोगों की शक्ति बढ़ती है, कोई तामसिक जगह में जाने से तामसिक लोगों की शक्ति बढ़ती है। इसलिए बताया जाता है कि राक्षसों की शक्ति रात को बढ़ जाती है। इसलिए जब वराहदेव हिरण्यकश्यप के साथ में युद्ध कर रहे थे तो खेल रहे थे, लेकिन हिरण्याक्ष ने सोचा मैं कितना शक्तिशाली हूं, मैं सामना कर रहा हूं विष्णु का। और ऐसे जब लीला चलती रही तो बादलों के पीछे छुपे हुए देवतागण चिंतित होने लगे, और अंत में कहने लगे अब सूर्यास्त का समय आ गया है, रात होने ही जा रहा है, अब रात्रि काल में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, तो कृपया जल्दी इसे नाश कर दीजिए हे प्रभु। भगवान के लिए रात क्या और दिन क्या, सब शक्ति तो उन्हें से आती है, लेकिन फिर भी एक भावना है। तो इस तरह से वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक वातावरण में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों की शक्ति बढ़ती है, उनको अच्छा लगता है। लेकिन कोई तामसिक व्यक्ति यहां आके बैठेगा, सोचेगा क्या है ये, क्या चल रहा है, वो निकल जाएगा, यहां से रहेगा नहीं। और कोई भक्त जाके कोई शराब के अड्डे में जाके बोलेगा अरे कितनी गंदी जगह है, निकल जाए यहां से जल्दी से, उन लोगों की शक्ति वहां बढ़ जाती है और भक्तों की शक्ति यहां बढ़ जाती है। तो भगवान कृष्ण को मालूम था कि पांडवों की शक्ति बढ़ेगी अगर वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाएंगे। ये सही है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु कुरुक्षेत्र में हुई तो वो स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। वैसे बताया जाता है कि कोई युद्ध करते हुए अगर मरेगा तो वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति करेगा। एक विशेष स्वर्ग लोक है, ऐसे युद्ध में अपना प्राण त्याग करने वाले लोगों के लिए, और ये सब लोग वहां जाते हैं। आजकल जो जिहाद के लिए सब जो दे रहे हैं ना प्रेरणा लोगों को, आपको उस स्वर्ग में प्राप्त होगा, आप युद्ध में अपने जान दे देंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे और वहां आपको ये सब सुविधाएं मिलेंगी, खाने के लिए स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा, ऐसे उनको उकसाया जाता है जो आतंकवादी है जिहाद के नाम पर। तो क्या बात कर रहे हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान के धाम के बारे में वो नहीं बता रहे उनको। आप युद्ध में मरोगे, स्वर्ग लोक में जाओगे, और खास करके कुरुक्षेत्र में अगर कोई मर गया युद्ध करते करते तो निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो भी योद्धा कुरुक्षेत्र के रणभूमि में थे वो स्वर्ग लोक नहीं और आगे भगवान के पास चले गए, क्योंकि श्री कृष्ण के कमल नेत्रों के सामने उनकी मृत्यु हो गई। भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि उन सब के ऊपर थी, भगवान कृष्ण के सामने उन्होंने प्राण त्याग दिया। हम लोग अपराध कर रहे हैं या नहीं हम कैसे समझ सकते हैं? पहले हमें जानना चाहिए शास्त्रों से कि अपराध क्या चीज होता है। जैसे हरि नाम के प्रति 10 अपराध हैं जो हम रोज पढ़ते हैं, अगर हम जानेंगे नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो हम समझेंगे नहीं कि अपराध क्या है। जैसे कई बार अगर कोई भक्त दंडवत कर रहा है, कोई नए आदमी आते हैं कभी कभी, वो उनके ऊपर से शरीर के ऊपर से चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार का अपराध है, ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर से हमें लांघना नहीं चाहिए, और खास करके भक्त के ऊपर। इस तरह से अगर हमें ज्ञान प्राप्त होगा कि अपराध क्या है तो हम इस अपराध से बचेंगे। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि कई तरह के अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए भक्ति मार्ग में, खास करके जब हम मंदिर में आते हैं तब। जैसे कि भगवान के सामने पैर फैला के बैठना, यह एक अपराध माना जाता है। या रूप गोस्वामी यह भी बताते हैं कि अपने घुटनों में ऐसे ऐसे हाथ करके बैठना, यह भी भगवान के सामने ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे कई चीजें हैं, इनको सेवा अपराध कहते हैं। आप में से जो इन अपराधों के बारे में जानना चाहते हैं आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ सकते हैं, या तो आप इनको सुनना चाहते हैं तो अगले रविवार को पढ़ा के सुनाएंगे। सुनना चाहते हैं? ये सेवा अपराध है। सेवा अपराध करने से इसके लिए राहत है कोई? हरिनाम लेने से सेवा अपराधों से मुक्त हो सकते हैं, अगर गलती से भी हो जाए। लेकिन वैष्णव अपराध करने से इसका जो उपाय है वो बहुत कठिन है। केवल उस वैष्णव के पास ही जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए, जब वो वैष्णव क्षमा करेगा तभी इस अपराध से मुक्त हो सकते हैं, भगवान भी नहीं बचाएंगे। जैसे कि दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के साथ में हुआ था। दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज के प्रति बहुत अपराध किया और भगवान के पास गए, जब भगवान की शक्ति ही उनके ऊपर आ टूट पड़ी और भगवान नारायण ने कहा सॉरी मैं भी आपको नहीं बचा सकता, बचाने वाले केवल वही हैं जिनके चरण कमलों में आपने अपराध किया है, वहीं पर जाइए। इसी तरह से हमें वैष्णव अपराध से बचने का प्रयास करना चाहिए, मतलब वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वैष्णवों को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वैष्णवों में दोष नहीं देखने चाहिए, वैष्णवों के बारे में बुरा सोचना नहीं चाहिए। ये सब वैष्णव अपराध माने जाते हैं। वैसे ज्यादा से ज्यादा वैष्णव अपराध क्या है इसके बारे में हम सुनेंगे तो हमें आश्चर्य होगा। यहां तक कि बचाया जाता है कि वैष्णव को देखकर अगर हम प्रसन्न नहीं हुए तो वो भी एक प्रकार का अपराध है। अगर हमने सोचा एक कोई वैष्णव आ रहा है, अरे रे रे, रे आ गए हमारे सामने जी, हम सोच रहे थे कि नहीं इधर से चले जाएंगे वो, लेकिन आ गए। ठीक है, हमें प्रसन्न होना चाहिए वैष्णवों को देखकर, देखो कृष्ण का दास आया है। तो खैर ये विषय काफी बड़ा है, लेकिन कम से कम वैष्णवों की निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। स्वाभाविक है कि यह कलयुग में हम दूसरों में दोष देखेंगे, लेकिन फिर भी हमें समझना चाहिए कि ये हरि जन है, हरि के जन प्रिय हैं भगवान श्री हरि को, श्री कृष्ण को, इसलिए कभी भी इनकी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए, इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, भक्तों से उल्टे पुल्टे बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है हमारे भक्ति लता बीज को सुरक्षित रखने के लिए। बड़ा बुद्धिमान प्रश्न है, बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रश्न किए हैं, क्या बिना कष्ट और दुख के भक्ति हो सकती है, या कष्ट ही हमारी भक्ति है? केवल कष्ट भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति करते करते जो कष्ट आते हैं वो हमारी भक्ति समझना चाहिए। कष्ट तो सब जगह लोग भुगत रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपकी सेवा में है प्रभु, जो कष्ट आते हैं मैं उनको दिव्य आनंद समझता हूं, वही मेरे जीवन के आनंद हैं। इसका मतलब है कि आपका प्रश्न यह है कि बिना परीक्षा दिए हुए क्या विद्यार्थी पहली कक्षा से दसवीं तक पहुंचकर दसवीं कक्षा से पास होकर जा सकता है? आपका जवाब क्या है? कितने लोग हां सोचते हैं, कितने लोग ना कहते हैं? अरे परीक्षा के बिना कोई विद्यार्थी पहली कक्षा से लेकर दसवीं तक और दसवीं से बाहर पास होकर जा सकता है? नहीं। उसी तरह से भक्ति मार्ग में इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना कष्ट के आगे नहीं बढ़ सकता है। भक्त क्यों? कोई भी व्यक्ति, यहां हर एक व्यक्ति को दुख का सामना करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि केवल भक्त, लेकिन भक्त का दृष्टिकोण जो होता है वो अलग होता है, इसलिए वो भक्ति मार्ग में प्रगति करता है। कई लोग होते हैं कष्ट जब जीवन में आ जाते हैं भक्ति मार्ग में तो भक्ति ही छोड़कर चले जाते हैं, अब नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ में जीते हैं तो हो सकता है थोड़ी तू मैं हो जाए, कभी कभी हो सकता है, होता है कभी, लेकिन फिर भी कोई गैर समझ, किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ नहीं किया, तो फिर ऐसे हो के व्यक्ति सोचता है चलो हम मंदिर ही नहीं जाएंगे, हम भक्ति छोड़ देंगे, या कोई दूसरे ही बाहरी बाहर से कोई आफत आ गई जीवन में तो कोई सोचते हैं अरे इतना भक्ति करते हैं फिर भी हमको इतनी कष्ट आ रही है तो भक्ति करने से क्या फायदा, भक्ति छोड़ देते हैं। तो ये हमारी भक्ति की परीक्षा है कि कष्ट आने के बाद हम भक्ति छोड़ेंगे या भक्ति में ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। हमें चाहिए कि हर कष्ट का अनुभव करने के बाद हम भक्ति में ज्यादा से ज्यादा प्रगति करें, और भी सुदृढ़ हमारी निष्ठा होनी चाहिए भक्ति में, कम नहीं होनी चाहिए। और कोई प्रश्न किसी के? बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कष्ट सहन किया, एक घंटा डेढ़ घंटा, अभी हम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण।